Hare Krishna. थोड़ी देर हो गई, क्षमा कीजिए। हम राधा कुंज बिहारी मंदिर में थे, वहाँ कार्यक्रम था, आते आते थोड़ी देर हो गई। अच्छा, एक निवेदन है कि आप में से जो भगवान के श्री विग्रहों को पीठ दिखाकर बैठे हैं, कृपया आप थोड़ा मुड़ जाइए। जब दर्शन खुले होते हैं तो भगवान को पीठ दिखा के बैठना ठीक नहीं है, तो थोड़ा इस तरफ उस तरफ कैसे भी मुड़ जाइए। ये कृपया याद रखिएगा जब भी दर्शन खुले हों। आज श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर का आविर्भाव दिवस है, तो एक भजन गाएंगे हम। वैष्णव विज्ञप्ति, वैष्णव तत्व। नरोत्तम दास ठाकुर द्वारा रचित प्रार्थना से। एबार को रुना करो वैष्णव गोसाई, एबार करुणा करो वैष्णव गोसाई,
एबार करुणा करो वैष्णव गोसाई।
पतित पावन तोमा बिन के हो नाए,
पतिता पावना तोमा बिन के हो नाए।
जहार निकटे गेले पाप दूरे जाए,
पाप दूरे जाए।
एमन दयाल प्रभु के बाको था पाए,
हे मन दयाल प्रभु के बाको था पाए।
गंगार परश होइले पश्चात पावा,
पश्चात पावा।
दर्शन पवित्र करो ए तुमार गो, स्थाने अपराधे तारे हरि नाम,
हरि स्थाने अपराधे तारे हरि नाम।
तुम स्थाने अप राधे नाही परित्रा, तुमर हृदय सदा गोविंद विश्राम गोविंद कहे न मोर वैष्णव पराण
गोविंद कहे न मोर वैष्णव पराण
प्रति जन्मे कोरी आशा चरणे रधुलि नरोत्तमे करो दया अपनर बोले बार करो ना करो वैष्णव गोसाई पतित पावन तुम्हारा बिन के हो ना हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे हरे
हरे कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण
हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे हरे वैष्णव ठाकुर जय वैष्णव ठाकुर जय वैष्णव ठाकुर जय वैष्णव ठाकुर जय भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर जय भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर जय जय प्रभुपाद 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 जय जय प्रभुपाद
प्रभुपाद
निताय गौरा हरि बोल हरि बोल हरि बोल निताय गौरा हरि बोल
श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर श्रील प्रभुपाद की जय। श्रील प्रभुपाद की जय। गौर प्रेमानंदे। ओम ज्ञान तिमिरांधस्य ज्ञानांजन शलाकय चक्षुरोन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदांतिकं। वंदेहं श्री गुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादां सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। नम ओं विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे वांछाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। आज हम यहाँ श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर का दर्शन कर पा रहे हैं हमारे श्रील प्रभुपाद जी के पास में। श्रील प्रभुपाद जी के गुरु थे श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर और आज उनका आविर्भाव दिवस है। जिस प्रकार से भगवान के जन्म को जन्म हम नहीं कहते हैं बल्कि आविर्भाव कहते हैं, जिस प्रकार से भगवान के तथा कथित मृत्यु को हम मृत्यु नहीं कहते हैं तिरुभाव कहते हैं, ठीक उसी तरह से भगवान के जो बड़े भक्त हैं उनके जो आचार्य हैं उनके जन्म को भी जन्म न कहकर हम आविर्भाव कहते हैं, उनकी मृत्यु को मृत्यु न कहकर हम तिरुभाव कहते हैं। क्योंकि जैसे भगवान प्रकट होते हैं इस भौतिक जगत में, यहाँ थोड़े वर्षों तक लीला करते हैं और फिर अप्रकट हो जाते हैं, उसी तरह से भगवान के जो पार्षद होते हैं भगवान के उद्देश्यों की पूर्ति के लिए यहाँ भेजे जाते हैं इस भौतिक जगत में। तो श्रील भक्त सिद्धांत सरस्वती ठाकुर एक ऐसे पार्षद हैं जो कोई विशेष कार्य को संपन्न करने हेतु भगवान के द्वारा यहाँ भेजे गए, यहाँ पर प्रकट हुए 1874 में। और उन्होंने यहाँ पर भारत भूमि में जन्म लिया बंगाल में, और एक ऐसे वैष्णव और गौड़ीय वैष्णव संप्रदाय का प्रचार प्रसार किया कि आज हम जो यहाँ इस मंदिर में बैठे हैं इस आंदोलन के भाग हैं, ये श्रेय श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर और उनके पहले श्रील भक्त विनोद ठाकुर को जाता है। श्रील भक्त सिद्धांत सरस्वती ठाकुर के आदेशों का पालन करके ही हमारे श्रील प्रभुपाद जी विदेश गए थे 1965 में वहां जाकर उन्होंने प्रचार आरंभ किया और आज ये चमत्कार हो गया है हमारे सामने। श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर के प्रणाम मंत्र इस प्रकार से हैं, जैसे प्रभुपाद जी के दो पंक्तियां हैं प्रणाम मंत्र में, श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर के प्रणाम मंत्र में चार पंक्तियां हैं। नमः ओम विष्णुपादाय कृष्ण प्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति सिद्धांत सरस्वती इति नामिने। तो उनका नाम था भक्ति सिद्धांत सरस्वती, जो कि उन्होंने संन्यास लेते समय किया। संन्यास आश्रम उन्होंने ग्रहण किया 1918 में, और उस समय और कोई था नहीं। संन्यास आश्रम क्यों ग्रहण किया इसकी चर्चा थोड़ी देर में हम करेंगे। वैसे उनके जन्म का नाम था विमला प्रसाद। उनके पिता थे भक्ति विनोद ठाकुर, परंतु जाने जाते थे बाहर के समाज में केदारनाथ दत्त के नाम से। तो इनका नाम फिर हुआ विमला प्रसाद दत्त। उस समय श्रील भक्ति विनोद ठाकुर जिला अधिकारी थे, जगन्नाथपुरी में निवास करते थे। अंग्रेजों का सरकार था, बहुत ऊंचे पद पे उनके पिता भक्ति विनोद ठाकुर थे, और वो उसी रास्ते पे रहते थे एक घर में जिसका नाम उस समय था नारायण छाता, जहां आज एक गौड़ीय मठ है, जो कि रथ यात्रा के रास्ते में पड़ता है। और उसी घर में श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर का जन्म हुआ। उस जमाने में हॉस्पिटल वगैरह में नहीं जाया करते थे जन्म के लिए, घर में ही जन्म लेते थे। कई बार घर में ही एक कमरा हुआ करता था जिसमें जन्म आदि के लिए सब स्थान व्यवस्था होती थी। जगन्नाथ भगवान की पराशक्ति हैं विमला देवी। विमला देवी का विग्रह जगन्नाथ मंदिर के प्रांगण में पाया जाता है, और जगन्नाथ मंदिर में ऐसी प्रथा है, ऐसा नियम है कि जब भोग भगवान जगन्नाथ को अर्पण किया जाता है, वो तब तक महाप्रसाद के रूप में बांटा नहीं जाता जब तक कि वो महाप्रसाद विमला देवी को अर्पण न किया गया हो। फिर जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा के सामने रख के जब भोग अर्पण किया जाता है, उसके बाद वही भोग जो प्रसाद हो चुका होता है, फिर भी अभी महाप्रसाद होना है, वहां विमला देवी के पास में लाया जाता है, वहां फिर अर्पण किया जाता है उनको, और फिर श्रद्धालु भक्तों के बीच में, बल्कि सब जगह ये महाप्रसाद बांटा जाता है। तो विमला देवी है उनका नाम। तो उनके पीछे भक्ति विनोद ठाकुर ने अपने इस पुत्र का नाम रखा विमला प्रसाद। बचपन से ही विमला प्रसाद ने दैवी गुणों का प्रदर्शन किया। आखिर उनके माता पिता भी कोई साधारण व्यक्ति नहीं थे, उनके पिता भक्ति विनोद ठाकुर तो शुद्ध भक्त थे ही, उनकी माता का नाम था भगवती देवी, और धाम में उनका जन्म हुआ, शुद्ध भक्तों से जन्म हुआ। तो इससे हम समझ सकते हैं कि ये कोई विशेष व्यक्ति ही थे। बहुत बचपन से ही आकर्षण भगवान के प्रति उनका था। जब इनकी आयु केवल थोड़े महीनों की ही थी तो रथ यात्रा हो रही थी। रथ भगवान जगन्नाथ का नारायण छाता के सामने रुक गया। आप में से जो जगन्नाथपुरी जाते हैं रथ यात्रा के लिए, आप जानते हैं कि कभी कभी बिना कोई कारण के भगवान का रथ रुक जाता है। कारण तो है, कारण है कि भगवान जगन्नाथ चाहते हैं कि वो वहीं रुक जाए, परंतु साधारण दृष्टि से पता नहीं चलता है कि ये रथ क्यों रुक गया। जब भगवान चाहते हैं तो आसानी से रथ आगे चलता है, लोग खींचते हैं, श्रद्धालु भक्त आते हैं, वो खींचते हैं, आसानी से रथ आगे बढ़ता है। परंतु जब भगवान जगन्नाथ आगे नहीं जाना चाहते हैं तो रथ बिल्कुल नहीं हिलता है। और महाराज प्रताप रुद्र के समय भी ऐसे हुआ, जब श्री चैतन्य महाप्रभु जगन्नाथपुरी में निवास कर रहे थे संन्यास आश्रम स्वीकार करने के बाद। एक बार जब ऐसे रथ यात्रा में रथ नहीं हिल रहा था तो महाराज प्रताप रुद्र ने सारे भक्तों को से कहा कि आप खींचो जोर से, फिर भी कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा था, फर्क नहीं पड़ रहा था। फिर पहलवानों को बुलाया गया, पहलवानों ने खूब खींचा, हिला नहीं रथ। हाथियों को बुलाया गया, हाथियों ने खींचा, फिर भी नहीं हिल रहा था। लेकिन जब चैतन्य महाप्रभु रथ के पीछे गए, उन्होंने अपने कपाल का स्पर्श रथ से किया, तुरंत रथ आगे बढ़ने लगा। तो भगवान जगन्नाथ के अपने कारण होते हैं जिनको हम समझ नहीं सकते। तो खैर, इस बार पूरे 3 दिन के लिए ये रथ नारायण छाता, जो कि श्रील भक्त विनोद ठाकुर का निवास स्थान था, वहां रुक गया। तो श्रील भक्त विनोद ठाकुर तो महान वैष्णव थे, तो उन्होंने इस मौके का फायदा उठाया और सारे 3 दिन दिन भर उन्होंने संकीर्तन की व्यवस्था की। वहां पर सुबह से लेकर रात तक वहां पे संकीर्तन चलता रहा। और इन 3 दिनों में एक बार उनकी पत्नी भगवती देवी ने विमला प्रसाद को अपनी गोदी में लेकर रथ के ऊपर चढ़ना ठीक समझा। उस समय इसके लिए अनुमति होती थी, बल्कि 2-4 साल पहले तक भी अनुमति थी, केवल अभी 2-4 सालों में कोई सुरक्षा के दृष्टिकोण से अभी भक्तों को रथ के ऊपर चढ़ना मना है। नहीं तो पहले कई भक्त लोग जाते थे ऊपर, पंडों की पहचान हो जाए तो पंडित बुला लेते थे ऊपर, परंतु अभी ये भी मना है। तो उस समय भगवती देवी थी और उनके पति तो जिलाधिकारी थे, बहुत ऊंचे अधिकारी व्यक्ति थे, तो अपने पुत्र को लेकर गोद में वो गई ऊपर। और जैसे ही बालक विमला प्रसाद भगवान जगन्नाथ के निकट आए तो उन्होंने अपने हाथ, छोटे छोटे हाथ फैलाए और सीधे भगवान जगन्नाथ के चरण कमलों तक पहुंचे और पकड़ लिया। और ठीक उस समय जो भगवान जगन्नाथ के गले में फूलों की माला थी वो गिर के सीधे बच्चे के ऊपर आ गई। तो सारे लोग समझ गए कि भगवान जगन्नाथ की विशेष कृपा इस बच्चे के ऊपर हुई है। और अन्न प्राशन भी उसी दिन या उसी समय शायद हुआ होगा, भगवान जगन्नाथ का महाप्रसाद लेकर अन्न के थोड़े दाने उस बालक के मुंह में डाले। जैसा आप जानते हैं अन्न प्राशन की विधि या संस्कार लगभग बच्चे के 5वें-6वें महीने में होता है, 6 महीने के बाद। तो ये संस्कार भी वहीं हो गया। फिर और जब आगे बढ़ते रहे श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर, तो एक बार घर में आम आया। आम की ऋतु थी तो आम तो खाना ही खाना है, भारत में सभी लोग आम खाते हैं। तो घर में आम आया और बच्चे विमला प्रसाद ने एक आम खा लिया भगवान को भोग चढ़ाए बिना। अब बहुत छोटा था, उसे इतना पता नहीं था कि भोग चढ़ाना होता है, तो आम को बिना भोग चढ़ाए ऐसे ही खा लिया। तो भक्त विनोद ठाकुर ने देखा कि बच्चे ने क्या किया है। ओह आई एम सॉरी विश्वंबर प्रभु, यू आर ऑल्सो हियर, समबडी इज ट्रांसलेटिंग फॉर यू, ओके ओके थैंक यू। एनीबडी एल्स हियर हु डज नॉट अंडरस्टैंड हिंदी, इफ देयर इज एनीबडी, वी रिक्वेस्ट डिवोटीज हु आर नियर बाय टू प्लीज ट्रांसलेट फॉर देम। If there's anybody else who does not understand English, someone's translating for you. Okay, thank you. तो उस समय श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर और उस समय विमला प्रसाद थे, उन्होंने जब ये आम खा लिया तो श्रील भक्ति विनोद ठाकुर ने बड़े हल्के स्वर में प्यार से उनको समझाया कि अरे तुमने बिना भगवान को भोग चढ़ाए आम खा लिया, ऐसे कभी नहीं करना चाहिए। ऐसे चिल्ला के वगैरह नहीं कहा, हल्के रूप से कहा, अरे तुमने ऐसे खा लिया। तो हालांकि ऐसे बिल्कुल हल्के ढंग से कहा था, हसमुख चेहरे से कहा था, परंतु विमला प्रसाद ने इस बात को बहुत गंभीरता से ले ली। इतना बुरा लगा उनको, इतना बुरा लगा कि उस कम आयु में बचपन में ही उन्होंने व्रत लिया कि मैं कितना गिरा हुआ पतित बच्चा हूं, पतित व्यक्ति हूं, मैंने भगवान को भोग चढ़ाए बिना ये आम खा लिया, कितना बुरा कार्य मैंने कर लिया, इसलिए इसके लिए प्रायश्चित यही होना चाहिए कि मैं आजीवन आम कभी नहीं चखूं। और जो बचपन में लिया हुआ व्रत उनका था उन्होंने आजीवन रखा, कभी भी तोड़ा नहीं उस व्रत को। और उनके शिष्य भी बताते हैं जब आश्रम में भी लोग आम तो खाते थे ना, तो आश्रम में भी कभी कभी आम आता था, तो भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर भी आश्रम में रहा करते थे, तो सारे उनके शिष्य उनके भक्त सारे आम खा रहे होते थे, तो सारे भक्त जानते थे कि उन्होंने व्रत लिया है, परंतु फिर भी जाके कहते थे गुरु महाराज आप आम लेंगे, तो कहते थे नहीं मैं इतना पतित हूं, बहुत पापी हूं, मैं नहीं ले सकता। तो इस व्रत का पालन उन्होंने किया। छोटी सी बात थी, देखिए जब बचपन में कोई कर लेता है कोई चीज तो इतनी गंभीरता से नहीं लेते हैं, परंतु विमला प्रसाद ने बहुत गंभीरता से ली और आगे चल के बहुत ही कम आयु में ही उन्होंने भगवद गीता को कंठस्थ कर लिया और अपने पिता के साथ यहां वहां जाते थे। जब पिता जाके गीता या भागवत के ऊपर प्रवचन देते थे तो विमला प्रसाद उनके साथ जाते थे, बैठते थे, सुनते थे। इसलिए बच्चों के लिए भी एक आदत बनानी चाहिए कि वो सत्संग में आए, और उनको प्रशिक्षण देना चाहिए, प्रेरणा देनी चाहिए, वो आदत दिलानी चाहिए कि वो बैठें और सुने। भले उनको कभी कुछ समझ आए नहीं आए, थोड़े नटखट होते हैं, चंचल होते हैं, हिलते रहते हैं इधर उधर, बड़े भी हिलते रहते हैं प्रवचन के समय, ऐसी कोई बात नहीं है, तो फिर भी बच्चों को भी थोड़ा बुलाने के लिए प्रयास करना चाहिए। हाँ यदि कोई ज्यादा आवाज कर रहे हो तो फिर अलग बात है, परंतु प्रयास ये होना चाहिए। तो वैसे जाके बैठते थे वहां पर, शीघ्र ही पाठशाला में इतनी अच्छी पढ़ाई उनकी हुई कि सभी लोग उनकी बुद्धि स्मृति शक्ति आदि को देखकर विस्मित हो जाते थे। एक बार किसी चीज को सुन लेते थे या पढ़ लेते थे तो याद रख लेते थे। श्रुतिधर, ऐसे व्यक्ति को श्रुतिधर कहते हैं जो एक बार सुनने से बात को याद रख सकता है। अब कलयुग में यह बहुत ही दुर्लभ है। सत्य त्रेता द्वापर में, विशेष करके सत्य त्रेता में, अधिकतर लोग श्रुतिधर हुआ करते थे। तो जब गुरुकुल में जाते थे तो गुरु के मुख से मंत्रों का उच्चारण सुनते थे, बार बार उसको कंठ कहने दोहरा कर वो फिर उसको कंठस्थ कर लेते थे। इस तरह से एक दो पांच श्लोक नहीं, हजारों हजार लाखों श्लोक कंठस्थ कर सकते थे। सारे वेद आदि को सब कंठस्थ करते थे ऐसे केवल सुन के। तो श्रील भक्त सिद्धांत सरस्वती ठाकुर भी श्रुतिधर थे, बुद्धि भी उनकी बहुत तीव्र थी, इसलिए जल्दी से सब कुछ सीख पाए, समझ पाए। और बचपन से ही फिर 10-11 साल में भी वो भगवद गीता के ऊपर व्याख्यान दे सकते थे, जाके कुछ कह देते थे। जब बच्चे लोग भगवद गीता या कोई दार्शनिक विषय पर कुछ कहते हैं तो बड़े लोगों को बहुत आश्चर्य होता है, ध्यान से सुनते हैं। तो प्रचार के लिए एक तरीका है, याद रखिए। जब आप देखते हैं कि कोई लोग आपकी बात नहीं सुन रहे हैं, बच्चों के द्वारा बुलवाइए, फिर सारे लोग आश्चर्यचकित हो जाएंगे, सुनेंगे कि अरे ये बच्चा भी बोल रहा है। तो खैर, श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर ऐसे आगे बढ़ते गए। जब उनके पिता कलकत्ता में थे और नए घर का निर्माण कार्य चल रहा था, तो खुदाई जब हो रही थी जमीन की, तो वहां श्रील भक्ति विनोद ठाकुर को एक कूर्म देव की मूर्ति मिली और इसी मूर्ति को उन्होंने अपने पुत्र को दे दिया, विमला प्रसाद को। और विमला प्रसाद ने फिर उस दिन से, जबकि उनकी आयु लगभग 7 की हुई होगी, उन्होंने कूर्मदेव की सेवा करना शुरू किया, तिलक भी स्वीकार ग्रहण करना शुरू किया। और इस तरह से बड़े श्रद्धा से वो हरि नाम लेते थे, नरसिंह देव मंत्र बोलते थे, कूर्मदेव की उपासना करते थे, और ऐसे उनका बचपन बीत गया। गणित और ज्योतिष में वो बहुत प्रवीण थे। और जब तक वो 15 साल के हो गए, इतने बुद्धिमान थे, इतने जानकार थे, इतने प्रवीण हो गए थे ज्योतिष और गणित आदि में, कि जो उनके बुजुर्ग थे, उनके अध्यापक आदि थे, बड़े बड़े पंडित थे वहां के, उन्होंने उनको एक पदवी दे दी, श्री सिद्धांत सरस्वती। उन्होंने कुछ लेख भी लिखे थे, को किताब भी लिखे थे, बहुत कम आयु से। तो आगे चल के श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर ने इसी नाम को रखा जब संन्यास लिया। सिद्धांत सरस्वती था पहले से नाम, और फिर उन्होंने भक्ति जोड़ दिया, फिर भक्ति सिद्धांत सरस्वती, ये नाम उनका संन्यास के समय हुआ। परंतु खैर, ऐसे वो ज्योतिष गणित आदि में बहुत शुरुआत में पंडित थे, परंतु धीरे धीरे जैसे भक्ति में रुचि और होने लगी, तो उन्होंने ये सब चीजें छोड़ दी, इनमें और रस नहीं आने लगा उनको। तो जब 20-21 साल की आयु के थे, तो त्रिपुरा के राजा ने उनको बुलवाया कि राजकुमार को आप शिक्षण दीजिए, तो ऐसे किया। फिर 2 साल से अधिक नहीं टिक पाए, फिर से आ गए अपने पिता के पास। कम आयु में ही बहुत बड़े विद्वान थे वो, और सब जगह उनकी ख्याति फैल गई कि केदारनाथ दत्त जी के जो पुत्र हैं विमला प्रसाद, श्री सिद्धांत सरस्वती बहुत ही बुद्धिमान है, बहुत ही ज्ञानी है, शास्त्रों में पंडित है। एक बार हुआ ये कि मिदनापुर में एक सभा आयोजित किया गया था, और सभा में चर्चा ये चल रही थी कि ब्राह्मण कौन होते हैं, ब्राह्मणों की परिभाषा क्या है इत्यादि। तो श्रील भक्ति विनोद ठाकुर को भी बुलाया गया था वहां पे, परंतु उस समय वो बीमार पड़ गए और अपने बिस्तर में ही थे, उसे बाहर उठ नहीं पाए, चल नहीं पाए। तो उन्होंने अपने तरुण पुत्र श्री सिद्धांत सरस्वती विमला प्रसाद को भेजा और उन्होंने कहा कि जाओ, यहां ये लोग स्मार्त विचार के हैं, ये सोचते हैं कि जो जन्म से ब्राह्मण है वही सच्चा ब्राह्मण है, जो जो सही सिद्धांत है इसकी स्थापना करो कि वास्तव में ब्राह्मण कौन है, और जो भगवान कृष्ण का भक्त होता है, जो वैष्णव होता है, उसका स्थान ब्राह्मण की तुलना में क्या है। तो श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर मिदनापुर में गए, तो वहां पे ये वाद चल रहा था। थोड़े लोग ब्राह्मणों के पक्ष में बोल रहे थे, थोड़े वैष्णवों के पक्ष में बोल रहे थे। तो उस समय जो श्री चैतन्य महाप्रभु, खास करके नित्यानंद प्रभु आदि अद्वैताचार्य, उनके जो वंश में आने वाले, जन्म से जो वंश होता है, उनके वंशावली जो थी, उनके वंश में आने वाले कई ब्राह्मण थे, तो उनका एक अपसंप्रदाय हो गया था जिसको हम जाति गोसाई कहते हैं। जाति गोसाई अर्थात, क्योंकि हमारा जन्म एक ब्राह्मण परिवार में हुआ है, इसका मतलब है कि हम ब्राह्मण हैं। परंतु भगवान श्री कृष्ण के उपदेश ऐसे नहीं है। चातुर्वर्ण मया सृष्टम गुण कर्म विभागशः। तो भगवान कृष्ण ने स्पष्ट कहा है कि ये जो चार वर्ण हैं, ये जन्म और कर्म के आधार पर निर्धारित की जाती हैं, न कि जन्म के आधार पर। और श्री चैतन्य महाप्रभु ने भी ऐसे कहा है, और साथ साथ चैतन्य महाप्रभु ने यह भी समझाया कि वास्तव में आत्मा का धर्म है, जैव धर्म है, श्री कृष्ण की सेवा करना। इसलिए शारीरिक रूप से भले कोई ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र हो, जो भी कुछ क्यों ना हो, जीव वास्तव में कृष्ण का दास है। और यदि कोई कृष्ण के दास का पद स्वीकार करके कृष्ण की सेवा करता है, शरणागत हो जाता है, तो वो वैष्णव कहलाता है। और ऐसे वैष्णव इन शारीरिक उपाधियों से परे माना जाता है। इसलिए श्री चैतन्य महाप्रभु जब जगन्नाथ रथ यात्रा के समय भगवान के रथ के सामने आते, अनेक श्लोकों का उच्चारण करते। उनमें से एक श्लोक था, नाहम विप्रो न च नरपतिर नापि वैश्यो न शूद्रो नाहम वर्णे न च गृहपतिर न वनस्थो यतिर्वा किंतु प्रोद्यन निखिल परमानंद पूर्णामृताब्धेर गोपी भर्तु पद कमलयोर दास दासानु दासः। चैतन्य महाप्रभु ने सिखलाया है। वो कहते हैं, मैं न कोई ब्राह्मण हूं, न क्षत्रिय हूं, न वैश्य हूं, न शूद्र हूं। मैं न ब्रह्मचारी हूं, न गृहस्थ हूं, न वानप्रस्थ हूं, न सन्यासी हूं। तो फिर मैं कौन हूं? गोपियों के जो स्वामी हैं, गोपी भर्तु हो, उनके दासों के दासों का मैं दास हूं। श्री कृष्ण के दासों का दास, ये मेरा परिचय है। वो श्री कृष्ण जो कि संपूर्ण ब्रह्मांड को आनंदित करते हैं, ऐसे भगवान श्री कृष्ण के दासों का मैं दास हूं, ये मेरा सही परिचय है। और ये वैष्णव है, तो ऐसा वैष्णव ब्राह्मण से परे होता है। अंततः ब्राह्मण कौन होता है, क्षत्रिय कौन होता है, वैश्य कौन होता है, शूद्र कौन होता है? आजकल इसके बारे में बहुत गलत फहमियां हैं, गलत धारणाएं हैं। लोग सोचते हैं कि क्योंकि ब्राह्मण कुल में जन्म लेने वाला व्यक्ति जब अपने आप को ब्राह्मण कहलाता है तो यही सही है, और इससे शोषण बहुत हुआ है, अन्याय बहुत हुआ है, इसलिए समाज में आजकल लोग घृणा करते हैं। हम दक्षिण भारत में भी देखिए, तमिलनाडु में और सारे सब जगह, क्योंकि तथाकथित ब्राह्मणों ने अन्य लोगों का शोषण किया है, उनके प्रति बुरा व्यवहार किया है, जो कि उचित नहीं है। क्योंकि वो इस गलत धारणा पे थे कि क्योंकि हमने जन्म लिया है एक ब्राह्मण परिवार में, हम ब्राह्मण बन जाते हैं। परंतु प्रभुपाद जी कहा करते थे कि एक रुपए के जनेऊ पहनने से कोई व्यक्ति ब्राह्मण नहीं बनता, किसी ब्राह्मण के घर में जन्म लेने से कोई व्यक्ति ब्राह्मण नहीं बनता। तो गुण से, लक्षणों से व्यक्ति ब्राह्मण आदि कहलाया जाता है। तो यदि कोई तथाकथित शूद्र परिवार में भी जन्म लेता है, परंतु यदि उसके गुण, उसके लक्षण आदि ब्राह्मण के है, तो उसे हमें ब्राह्मण जैसे स्वीकार कर लेना चाहिए। तो ब्राह्मण कौन होता है? जो सत्व गुण में स्थित है वो ब्राह्मण है, जो रजोगुण में स्थित है और जिसके अंदर सत्व गुण भी है वो क्षत्रिय है, जो रजो और तमो के मिश्रण में है वो वैश्य है, थोड़ा बहुत सत्व भी होता है, और जो जिसकी प्रधानता जिसके अंदर तमोगुण की है वो शूद्र कहलाता है, और जो बिल्कुल तामसिक है वो उससे भी नीचे चांडाल इत्यादि बहुत से हैं वर्ग। तो ये कोई भी हो सकता है। कई जगह देखा जाता है कि जन्म या जाति का इतना महत्व नहीं होता है जितना कि योग्यता या लक्षणों का होता है। तो ये सब चैतन्य महाप्रभु ने सिखलाया है। तो श्रील भक्त सिद्धांत सरस्वती ठाकुर श्री चैतन्य महाप्रभु के सही शिक्षणों को प्रस्तुत करना चाहते थे समाज के सामने।
अब अन्यों की बात तो दूर रही, श्री चैतन्य महाप्रभु के संप्रदाय में आने वाले अनेक लोग ऐसे थे जिन्होंने कि चैतन्य महाप्रभु के शिक्षाओं को बदल दिया और अपने मनमाने ढंग से उसे प्रस्तुत किया समाज में। श्रील भक्ति विनोद ठाकुर ने ऐसे लगभग 13 अपसंप्रदायों को पहचाना कि जो अपने आप को गौड़ीय मानते थे, श्री चैतन्य महाप्रभु के अनुयायी मानते थे, परंतु जो इस शिक्षाओं का पालन नहीं करते थे ठीक से, उन्होंने कहीं तो कुछ परिवर्तन किया था महाप्रभु की शिक्षाओं में, इसलिए ऐसे 13 अपसंप्रदाय हो गए, जैसे कर्ता भाज, फिर साखी बेकी, प्राकृत सहजीय, जात गोसाई इत्यादि। तो स्मार्ट ब्राह्मण वो होते हैं जो ये नहीं समझते हैं कि वैदिक शास्त्रों का मूल उद्देश्य है भगवान की भक्ति करना, भगवान का दास बनना। वेदैश्च सर्वैर अहम एव वेद्यः, वेदांत कृत वेदवेद एव चाहम। भगवान श्री कृष्ण भगवद गीता में कहते हैं कि वेद उन्हीं से उत्पन्न होता है, वेदांत की रचना उन्हीं ने की है, और वेदों को वही ठीक से जानते हैं, और वेदों को जानने का उद्देश्य है श्री कृष्ण को जानना। तो यदि कोई व्यक्ति बड़ा वेदों का पंडित होता है परंतु वो श्री कृष्ण को नहीं जानता तो फिर वो कैसे बड़ा पंडित हो सकता है, और श्री कृष्ण को कैसे जाना जा सकता है? भक्ति से। भक्त्या माम अभिजानाति यावन यश्चास्मि तत्वतः, भगवद गीता में भगवान कहते हैं कि केवल भक्ति से तुम मुझे जान पाओगे हे अर्जुन। दूसरे शब्दों में वेदों को जानना अर्थात श्री कृष्ण का भक्त बनना, और जो श्री कृष्ण का शुद्ध भक्त बनता है, हमें समझ लेना चाहिए कि उसे वेद का निष्कर्ष आ गया है। अब बैठ के सारे वेदों के का पठन करने की आवश्यकता नहीं है, केवल हरि नाम लेता है वो, फिर श्रीमद् भागवत भगवद गीता का पठन करता है, बस उसके लिए पर्याप्त है। तो ऐसे स्मार्ट जो होते हैं ये नहीं समझते हैं कि शास्त्रों का उद्देश्य है, निष्कर्ष है कृष्ण भक्ति। वो तरह तरह के कर्मकांडी विषयों में रमण करते रहते हैं। तो ये लोग मिले हुए थे वहां पर, साथ साथ में ये जो अपसंप्रदाय के तथा कथित गौड़ीय वैष्णव थे, जाति गोसाई आदि, ये भी इनसे मिल गए थे। तो श्रील भक्त सिद्धांत सरस्वती ठाकुर जानते थे कि जब मैं वहां पहुंचूंगा वहां पे वातावरण कुछ ऐसे रहेगा, आसान नहीं होगा इनके सामने सब कहने के लिए। तो बहुत बुद्धिमान प्रचारक थे वो। तो जब वो पहुंचे वहां पर तो सभापति जो थे उन्होंने इनको भी बुलाया, भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर को भी, आप कुछ कहिए। तो सर्वप्रथम तो उन्होंने ब्राह्मणों का खूब गुणगान किया। शास्त्रों में ऐसे बहुत सारे श्लोक हैं जिनमें ब्राह्मणों का गुणगान किया जाता है। सारे ब्राह्मण जो वहां बैठे थे बहुत खुश हो गए सुन के। और फिर उन्होंने बताया कि सच्चा ब्राह्मण कौन होता है। हाँ, ये ब्राह्मणों के गुण है सही है, लेकिन ब्राह्मण कौन है? केवल जिसने ब्राह्मणों के परिवार में जन्म लिया है क्या वो ब्राह्मण है? नहीं। क्या जिसने कोई जनेऊ उपवीत पहन लिया है वो ब्राह्मण है? नहीं। क्या जिसको केवल वेदों के मंत्र आते हैं क्या वो सही ब्राह्मण है? नहीं। फिर उन्होंने समझाया कि सही ब्राह्मण कौन होता है। ब्रह्म जानाति इति ब्राह्मणः, भगवान को जानने वाला व्यक्ति ही सही ब्राह्मण कहलाता है। और इसलिए जो वैष्णव है वो सब सर्वोच्च ब्राह्मण कहलाता है। इस तरह से उन्होंने एक बहुत ही सुंदर प्रवचन दिया वहां पर। बाद में जो लोग वहां उपस्थित थे इतने प्रभावित हो गए कि वहां जो पुलिस के प्रमुख थे, पुलिस वालों को बुलाया गया था वहां पे, क्योंकि उनको संशय था कि यहां कुछ गड़बड़ होना है। तो वो जब आए वो भी इतने प्रभावित हुए, और वो स्वयं खड़े रहे श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर के बाद, क्योंकि इतनी बड़ी भीड़ आके सिद्धांत सरस्वती ठाकुर के चरणों में स्पर्श करना चाहते थे, उनको प्रणाम करना चाहते थे, ऐसे प्रभाव उनका हुआ वहां पर। इस तरह से श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर का योगदान हमारे गौड़ी संप्रदाय में और इस संसार के भक्ति के प्रचार में बहुत ही विशेष रहा है। तो ये एक बात है जो बहुत महत्वपूर्ण योगदान माना जा सकता है उनका, कि उन्होंने श्री चैतन्य महाप्रभु के शिक्षाओं का सही प्रस्तुतिकरण किया, सही प्रचार प्रसार किया, उन्होंने जो भी गलत धारणाएं थी उनका खंडन किया, और नाना प्रकार के गलत धारणाएं थी, तो ये बहुत महत्वपूर्ण योगदान उनका रहा। दूसरी बात, उन्होंने समझा कि यदि मुझे अभी भगवद गीता और श्री चैतन्य महाप्रभु के उपदेशों का प्रचार प्रसार करना है तो अभी पुस्तकों के माध्यम से करना होगा। थोड़े वर्ष पहले मुद्रणालय का आविष्कार हुआ था यूरोप में, अब भारत में भी आ चुका था। उन्होंने सोचा कि जब हम मृदंग बजाते हैं कीर्तन में, तो मृदंग की जो ध्वनि है वो थोड़े दूरी तक ही सुनाई पड़ती है, परंतु जैसे हम यहां मंदिर में मृदंग बजाएंगे तो वहां दूर सड़क में सुनाई नहीं देगा कि मृदंग बज रहा है, कीर्तन की आवाज वहां तक नहीं पहुंचेगी। परंतु यदि हमने किताब छाप लिए मुद्रणालय के द्वारा, तो फिर ये किताब जब हम जाके बांटेंगे तो ये जगह जगह पहुंच जाएगी, और यही भगवत गीता का ज्ञान, यही कीर्तन का जो एक संदेश है वो फैल जाएगा। आखिर कीर्तन का क्या मतलब है? भगवान की कीर्ति का गान। तो न केवल नाम संकीर्तन परंतु गुण संकीर्तन, लीला संकीर्तन, ये सब कीर्तन माना जाता है। तो इस तरह से जब भगवत गीता का वितरण होता है, श्रीमद् भागवत का वितरण होता है, तो ये भी संकीर्तन है। इसलिए हमारे संस्था में पुस्तक वितरण को भी संकीर्तन कहते हैं। तो जो नए लोग आते हैं उनके मन में ये प्रश्न उठता है कि संकीर्तन का मतलब है मृदंग कर्ता लाजी से आदि के साथ में संगीतमय ढंग से भगवान के नामों का उच्चारण करना, लेकिन ये लोग बाहर जाते हैं पुस्तक वितरण करने के लिए तो इसको क्यों संकीर्तन कहते हैं वो लोग? ये प्रश्न कई लोग करते हैं। तो इसके पीछे कारण ये है कि उन किताबों में है क्या? कृष्ण कथा है। कृष्ण कथा है क्या? कृष्ण ने कही हुई बातें या कृष्ण के संबंध में कही हुई बातें? तो भगवद गीता, श्रीमद भागवत आदि ये सब कृष्ण कथा है। ये भी जब कृष्ण कथन होता है तो ये संकीर्तन है। तो इसलिए किताबों को जब बांटा जाता है तो ये भी संकीर्तन माना जाता है। इसलिए श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर ने मुद्रणालय को किताबें छापना और इनको बांटना, इसको बृहत मृदंग कहा। बृहत अर्थात बड़ा या महान। एक मृदंग ढोल यहां बजता है तो आवाज कम दूरी तक पहुंचती है, मुद्रणालय से छप के जब ये गीता भागवत किताब आते हैं उनको हम सैकड़ों सैकड़ों मीलों तक दूर दूर तक बांट सकते हैं। तो भगवान का संदेश बहुत दूर तक फैल जाता है। और श्रील प्रभुपाद जी, हमारे श्रील प्रभुपाद जी ने इसको बहुत गंभीरता से लिया। जब राधा कुंड में श्रील प्रभुपाद जी थे श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर के पास, उस समय उनका नाम अभय चरण डे था प्रभुपाद जी का, तो भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर का संग लेने के लिए वो राधा कुंड गए थे। उस समय यहां कलकत्ता में जो उन्होंने मठ की स्थापना की थी श्रील भक्ति सिद्धांत ने, उसमें थोड़ा मतभेद हो रहा था भक्तों के बीच में। मठ में कमरे थे तो वहां भक्त लोग थोड़े झगड़ रहे थे आपस में कि मुझे ये कमरा अच्छा, मुझे ये चाहिए, नहीं मुझे नहीं, तुम वो ले लो, मुझे ये चाहिए, नहीं नहीं मुझे ये चाहिए। तो कमरों को लेकर वाद हो रहा था भक्तों के बीच में। तो श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर इस बात को देखकर बहुत नाराज हो गए, उदास हो गए। वो कहने लगे, इस तरह से चलेगा तो क्या लाभ है, यदि ऐसे चलेगा तो इससे बेहतर ये होगा कि हम इस मंदिर की ईंट ईंट को बेच दें और जो पैसा आएगा उससे पुस्तकें छापें और सब जगह में इनको बांटें। फिर उन्होंने एक आदेश दिया प्रभुपाद जी को कि अभय चरण, तुम्हें यदि भविष्य में कभी पैसे आए मिले तुम्हें तो पुस्तकें छापो और बांटो। और इस आदेश को प्रभुपाद जी कभी भूले नहीं, इसलिए अंतर्राष्ट्रीय श्री कृष्ण भावनामृत का संघ, भावनामृत संघ की स्थापना जब उन्होंने की तो पुस्तक वितरण के ऊपर उन्होंने बहुत जोर दिया। तो ये दूसरा महत्वपूर्ण योगदान है श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर का। तीसरा योगदान ये है कि उन्होंने 64 मठों की स्थापना की, मंदिर और विग्रह की स्थापना की सारे भारतवर्ष में। पहली बार उन्होंने अपने दो सन्यासी शिष्यों को भी विदेश भेजा, इंग्लैंड में वो गए थे, बहुत सीमित सफलता प्राप्त की, ज्यादा नहीं कर पाए, फिर भी वो लौट के आ गए वापस। परंतु भारत में उनको बहुत सफलता प्राप्त हुई, 64 मंदिर बनाए उन्होंने, उत्तर भारत से लेकर दक्षिण, पश्चिम से लेकर पूर्व, और काफी बड़े बड़े भी मठ थे और इनमें उनके अनेक शिष्य रहने लगे। और श्रील प्रभुपाद जी भी जब भारत में आए तो उन्होंने वृंदावन में, मायापुर में, हैदराबाद में, मुंबई में मंदिरों की स्थापना की, क्योंकि वो जानते थे कि जब बड़े मंदिर बनेंगे तो लोग आकर्षित होकर आएंगे, जब यह आएंगे तो भगवान का दर्शन करेंगे, उनको कथा सुनने का अवसर मिलेगा, कीर्तन में भाग लेंगे, पुस्तक उन तक पहुंचा सकते हैं आसानी से। और यहां देखिए पुणे में ये राधा वृंदावन चंद्र मंदिर बना है, कितने लोग आते हैं, कितनी बड़ी संख्या में लोग आते हैं, कितने प्रभावित होकर जाते हैं। लोग यहां आते हैं, आश्चर्यचकित होकर मंदिर को देखते हैं, अंदर हो बाहर हो, तो कम से कम वो आते तो हैं यहां पर और फिर जुड़ जाते हैं। तो ऐसे मठों की या आश्रमों की या मंदिरों की स्थापना करने की विधि गौड़ी संप्रदाय में भी श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर ने शुरू की और प्रभुपाद जी उनके पद चिन्हों में चलते रहे। चौथी बात जो मैं बताना चाहता हूं, इसके बाद मैं समाप्त करूंगा प्रवचन, उन्होंने पहली बार श्री चैतन्य महाप्रभु की पीढ़ी के बाद में गौड़ीय संप्रदाय में गहरवे वस्त्रों को प्रारंभ किया, ब्रह्मचारी सन्यासी। पहली बार सन्यास आश्रम को स्वीकार किया और उन्होंने सन्यास आश्रम अन्यों को प्रदान भी किया। इसके पहले गौड़ीय वैष्णव संप्रदाय में केवल सफेद वस्त्र पहनते थे, केवल लोग बाबा जी होते थे, बाबा जी अर्थात जो परमहंस होते हैं, जो भगवान के शुद्ध भक्त होते हैं, केवल नाम संकीर्तन में, नाम जप में रहते हैं और दिन भर यही करते हैं और कुछ नहीं करते वो। तो उस समय जैसे षड गोस्वामी है, रूप सनातन गोस्वामी इत्यादि, वो बाबा जी वेश में थे, परमहंस वेश, एक छोटा सा धोती पहनते थे अपने घुटनों तक और एक उतरिया होता था सफेद रंग की, गहरे वस्त्र नहीं पहनते थे वो। परंतु यहां श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर ने शुरू किया। क्यों शुरू किया? इसलिए शुरू किया कि उनके पहले पिछले लगभग 100-200 वर्षों में कई लोग ऐसे थे जो अपने आप को चैतन्य महाप्रभु के अनुयायी कहलाते तो थे, परंतु बहुत गलत काम करते थे, न केवल शिक्षाओं को तोड़ मोड़ करके आचरण करते थे और प्रस्तुत करते थे समाज के सामने, परंतु अपने व्यवहार में भी वो आदर्श नहीं थे, बहुत गलत काम करते थे। इसके कारण सारे समाज में वैष्णव बड़े बदनाम हो गए। यदि किसी के बारे में कुछ बुरा कहना होता तो लोग कहते रहे ये तो वो वैष्णवी है, इस तरह से लोग बात करते थे। यहां तक बात पहुंच गई तो श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर ने देखा कि इस तरह से आज के जमाने में लोग ये परमहंस या बाबा जी वेश पहनने के योग्य नहीं है, इसलिए मैं भी बाबा जी वेश नहीं पहनूंगा, मैं वर्णाश्रम धर्म के अंतर्गत संन्यास आश्रम को स्वीकार करूंगा और मैं ये बताऊंगा, घोषणा करूंगा सारे समाज में कि मैं भी वर्णाश्रम धर्म का पालन करता हूं और इसलिए मैंने ग्यारहवें वस्त्र स्वीकार किए हैं। तो उन्होंने संन्यास आश्रम को स्वीकार किया ये दिखाने के लिए नहीं कि मैं कितना आगे बढ़ गया हूं, परंतु उनका उद्देश्य था कि सारे समाज में मैं संदेश फैलाऊं कि मैं तीन गुणों के अधीन हूं, मैं साधारण एक व्यक्ति हूं, मैं भगवान का दास हूं, मैं वर्णाश्रम धर्म के अंतर्गत हूं, मैं बाबा जी परमहंस आदि नहीं हूं। और जब भी कोई उनके पास आते थे, उनको प्रणाम करते थे, वो इतने नम्र रहते थे, कहते थे दासोस्मि, अपने शिष्यों से भी कहते थे दासोस्मि, मैं आपका दास हूं। अपने जब पत्र लिखते थे तो उसके अंत में भी दासोस्मि लिखते थे। तो इस तरह उन्होंने पहली बार ग्यारहवें वस्त्र और संन्यास आश्रम की शुरुआत गौड़ी संप्रदाय में की। और शील भक्ति सिद्धांत सरस्वती शील भक्ति वेदांत स्वामी शील प्रभुपाद जी ने भी इस प्रथा को जारी रखा। इसलिए हम देखते हैं कि हमारे मंदिरों में ब्रह्मचारी होते हैं, सन्यासी होते हैं, गौड़ी वैष्णव संप्रदाय में सन्यासी ब्रह्मचारी नहीं थे, सब लोग बाबा जी ही थे, परमहंस हुआ करते थे, ताकि ऐसे बदनामी न हो, वैष्णव के नाम पे लोग गलत काम न करें। इसलिए श्री भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर ने ऐसे किया और हमारे प्रभुपाद जी ने भी इसी प्रथा को जारी रखा। तो भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर का आज आविर्भाव दिवस है, उनके बारे में तो बहुत कुछ और कहा जा सकता है, परंतु समय की कमी है और आरती भी शुरू हो गई है और पुष्पांजलि भी करनी है हमें, तो इसलिए हम अभी कथा को यहाँ विराम देते हैं। श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर श्रील प्रभुपाद की जय। श्रील प्रभुपाद की जय। गौड़ प्रेमानंदे। हरे कृष्णा।